તારીખ 16/3/1995 ના દિવસે પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા ભાવનગરમાં થયેલ તત્વચર્ચા સળંગ નંબર 177.
એક પ્રશ્ન છે વિજયભાઈનો, પહેલા લઈ લઈએ. આપે ગઈકાલે ઋણાનુબંધ બાબત જે સ્પષ્ટતા કરી તેમાં પ્રારબ્ધ અને પુરુષાર્થ વચ્ચેને એક્ઝેક્ટ ભેદરેખા દર્શાવી છે. કારણ કે જ્ઞાની પુરુષનો ભેટો થવો ઉત્કૃષ્ટ પુણ્યાધીન હોઈ શકે, પરંતુ મુમુક્ષુ જ્યારે તેમના બોધને ગ્રહણ કરે છે, પામે છે, ત્યારે તેને પોતામાં રહેલ આત્મા અનાત્માના ભેદનું પ્રથમ વાર ભાન થાય છે અને સ્વરૂપનું યથાર્થ લક્ષ્ય બેસે છે. ત્યારબાદ તેમની આજ્ઞામાં રહીને દર્શન મૂળનો પૂર્ણ ક્ષય થતાં તેને સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થાય છે અને ત્યારબાદ રિયલ મોક્ષ માર્ગમાં પ્રવેશ થાય છે. આ ક્રમ બરાબર છે? બરાબર છે, એ પ્રમાણે જ ક્રમ છે. આત્મવિચારથી આત્મબોધ વચ્ચે અને આત્માબોધથી આત્મ અનુભવ વચ્ચે કાળની ઉત્કૃષ્ટતા અને જઘન્યતા કેટલી, અને તે કયા ફેક્ટર પર નિર્ભર છે? આત્મવિચારથી જે આત્માનો બોધ એટલે ભાવ ભાષણ થાય, એની વચ્ચે કોઈ કાળનો નિયમ નથી દેખાતો. એમાં યોગ્યતાની ડિગ્રી જુદા જુદા મુમુક્ષુમાં જુદી જુદી હોય છે. એક યોગ્યતાવાળા નથી હોતા. દરેકનો ભૂતકાળ જુદો જુદો હોવાને લીધે વર્તમાન યોગ્યતા પણ જુદી જુદી હોય છે. એટલે એમાં કોઈ કાળનો નિયમ નથી દેખાતો. પણ ભાવભાષણ પછી બહુ કાળ નથી લાગતો. ભાવભાષણ પછી ગણતરીના મહિનાઓમાં કે ગણતરીના દિવસોમાં કે ગણતરીના કલાકોમાં તો અનુભવ થાય છે, આત્મજ્ઞાન થાય છે. અને એનું જે મેઇન ફેક્ટર છે એ છે કે ભાવભાષણ છે એમાં આત્માનું અનંત સામર્થ્ય એની પ્રત્યક્ષતા સહિત ભાષે છે. એટલે પુરુષાર્થ ઉછાળો ખાઈને અંદરથી આવે છે એકદમ. અને જેટલું અનંત મહિમાવંત આત્મ સ્વરૂપ છે એટલું મહિમા પોતાને ભાસે છે. એટલે એ મહિમા એટલો બધો તીવ્ર આવે છે, એટલો બધો તીવ્ર આવે છે કે આત્મરસ એની અંદર ખૂબ તીવ્ર થઈને સ્વાનુભવ થવામાં વાર નથી લાગતી. અથવા પોતાનું જ સ્વરૂપ ભાષ્યમાન થયેલું હોવાને લીધે પોતાના સ્વરૂપથી પોતે દૂર રહે અને વિકલ્પનો પોતાપણે અનુભવ કર્યા કરે, એ વાત આત્મરુચિમાં પોસાતી નથી. એવી એક અનન્ય આત્મરુચિ પ્રગટ થાય છે. એ આત્મરુચિનો પણ ફેક્ટર છે, પ્રત્યક્ષ ભાવભાષણનો પણ ફેક્ટર છે અને સ્વસન્મુખતાનો પુરુષાર્થનો ઉછાળો આવે છે એનો પણ ફેક્ટર છે. આવા અનેક ફેક્ટરને આધારિત એમ કહી શકાય કે જેને ભાવભાષણ થાય એને સ્વાનુભવ થવામાં વાર ન લાગે, એને સ્વાનુભવ બહુ ઓછા સમયમાં થઈ જાય છે. ભાવભાષણ પહેલે યા પહેલે उनको एक यथार्थ मुमुक्ष को विश्वास आ जाता है कि अब मेरा मैं अवश्य तिर जाऊंगा, अब मैं संसार में भटकने वाला नहीं हूं, ये विश्वास उनको अंदर से आ जाता है। और वो आने का कारण यह है कि उनको अपूर्व आत्म जागृति वर्तती है, यथार्थ मुमुक्षु को अपूर्व आत्म जागृति वर्तती है। उसको ऐसा फील होता है कि ऐसी आत्म जागृति मुझे कभी अनंत काल में नहीं आई, ऐसी आई है अब के, तो अब मैं भटकने वाला नहीं, वो तो उनको फील होता है बराबर। हाँ कर, वो जोर तो होता ही, जोर होता है, जोर जोर आता है, बहुत जोर रहता है। ऐसा हुआ कि पूर्णता के लक्ष्य के बाद फोर्स बहुत रहता है, उसको आत्म प्रत्ययी, आत्म के आत्मा के कल्याण के प्रति का संवेग कहते हैं। वो संवेग का फैक्टर प्राय सामान्य मुमुक्षु में नहीं होता है। जो मुमुक्षु धर्म के क्षेत्र में प्रवेश किया, स्वाध्याय आदि करते हैं, समझते हैं, तत्वज्ञान का अभ्यास करते हैं, दूसरे दूसरे भी शुभ भाव के परिणाम करते रहते हैं, पूजा भक्ति, कभी उपवास, कभी यात्रा, कभी दान, तो उन सब में संवेग नहीं होने से काल लंबा जाता है। और बहुत लंबे काल के बाद ऐसा लगता है कि ऐसा करते करते समय बहुत गया, लेकिन अपना कुछ हो नहीं रहा है। और कहीं लाइन मिलती है कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना, लेकिन संवेग के अभाव के कारण वो करना चाहता है लेकिन हो नहीं पाता है, ऐसा बनता है। तो सामान्य सभी मुमुक्षों की जो कंप्लेन आती है वो आती है कि आप कहते हैं ऐसा हम करने को जाता है, लेकिन कभी थोड़ा होता है फिर चलता नहीं है, फिर चलता नहीं है हमारा। क्या कारण है इसके पीछे? कि जो संवेग होना चाहिए, फोर्स होना चाहिए, वो फोर्स नहीं है। और फोर्स नहीं होने का कारण पूर्णता का लक्ष्य नहीं माना, यही कारण है। और प्रतिबंध तो है ही, जब तो पूर्णता का लक्ष्य नहीं बनता है, इसका कारण ही प्रतिबंध में खड़ा है। स्वच्छंद तो फिर तो कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा, जब प्रतिबंध में खड़ा है तो वो प्रतिबंध वाले जो परिणाम है उसमें स्वच्छंद तो करेगा ही करेगा। स्वच्छंद और प्रतिबंध दोनों तो परिभ्रमण के कारण है, वो कारण अनादि के हैं, अभी मौजूद रहे तो मुमुक्षु को क्या फायदा हुआ। जो अनादि के कारण से स्वच्छंद और प्रतिबंध के कारण से परिभ्रमण चालू रहा, अब मुमुक्षु की भूमिका में भी वो नहीं गया, तो फिर उसको फायदा क्या हुआ इधर आके? ये कोई फायदा नहीं हुआ है। ये पूर्णता का लक्ष्य नहीं हुआ। हाँ, फर्स्ट प्रायोरिटी में आए तो पूर्णता का लक्ष्य हो ही जाएगा। जो वर्तमान प्रतिबंध है उसको तोड़ना चाहिए या जिसको उसने प्रायोरिटी दी है उसकी तुच्छता उसको समझ में आनी चाहिए स्वलक्ष्य ज्ञान से, कि ये तो मेरे अधोगति का कारण है। जिसको मैं प्रायोरिटी, जिस संसार को मैं प्रायोरिटी दे रहा हूँ, ये मेरे अधोगति का कारण है। इतनी बड़ी बड़ी गंभीर भूल मेरे से हो रही है, इसकी तुच्छता भास है, तो वास्तविकता में आना पड़ेगा। ये तो 128 में लिया कृपालु देव ने, कि हमने अनंत काल भव भ्रमण किया है, बहुत दुख भोगे हैं, ऐसे दुख भोगे हैं कि अगर दूसरा जीव ऐसा दुख भोगते हुए हम देख भी नहीं सके, सुन भी नहीं सके, ऐसे हमने खुद ने भोगे हैं। जैसे कहा था ना, वो देखा ना उन्होंने कि कुकड़ा को मांस कैसे निकालते हैं, कि पहले तो इनके पंख तोड़ते हैं, मारे बिना जिंदा जिंदा ही ऐसे वो जिंदा रहता है, पहले पंख खींच करके तोड़ देते हैं, फिर इनके दो पैर हैं उनको खींच करके वो पैर तोड़ देते हैं, खींच करके पैर तोड़ते हैं, फिर उसको जिंदा जिंदा उसके मांस निकाल के लिए उसकी चमड़ी को खोलने लगते हैं। जैसे कपड़े को फाड़ते हो ऐसे फाड़ने लग जाए, वो कितना भी चिल्लाए देख नहीं सके, अगर ऐसे जो हिंसा होती है देख नहीं सके आदि मनुष्य, ऐसे दुख भोगे हैं। क्यों भोगे हैं? कि स्वच्छंद और प्रतिबंध में रहे इसलिए भोगे हैं, दूसरा कोई कारण नहीं। हाँ, और प्रायोरिटी चेंज क्यों नहीं हुआ? कि ये सब बात हम विस्मरण करके भूल जाते हैं, गौण कर जाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। तो ये सब बात जिसको अंतर से स्मरण में आता है, अंतर ज्ञान से ऐसा स्मरण आता है, यानी अंतर से वो फील होने लगता है कि अब मुझे दुखी नहीं होना है, वो किसी कीमत पे, 128 का वही बात है कि किसी कीमत पे वो आत्मकल्याण कर लेना चाहता है, अनकंडीशनल, मेरी कोई शर्त नहीं उसमें। ध्येय का, हाँ वो सबसे ज्यादा तो ध्येय का होता है, समाज का भी होता है, कुटुंब परिवार का भी होता है, और ध्येय का तो होता ही है, वो सबसे ज्यादा होता है। इसलिए सबको प्राण छूट जाओ तो छूट जाओ, मेरे प्राण की आत्मकल्याण के आगे कोई कीमत नहीं है, प्राण का आहुति देने के लिए हम तैयार हैं अगर हमको आत्मकल्याण होता है तो, क्योंकि ऐसे अनंत बार प्राण आए और अनंत बार गए भी, इसकी क्या कीमत है। तो कृपालु जी ने एक जगह लिखा है कि अनंत बार देह ने अर्थे आत्मा गायो, आत्मा गल गया अनंत बार, वे एक बार आत्मा ने अर्थे देह गाड़वामां आवे तो अनंत काल का सुख हो जाएगा। अनंत बार देह के लिए आत्मा का उपयोग किया, आत्मा ने गायड़ो से खरेखर गुजराती एम छे, उपयोग किया नहीं, आत्मा ने नबड़ो पाड़े दीदो से गायड़ो, जो गल जाता है वो वीक हो जाता है। तो देहार्थ की मुख्यता के कारण से हमने हमारे आत्मा की शक्ति को तोड़ी है, आत्मा की शक्ति पैदा की है, जिस देह का आत्मा के लिए उपयोग होगा उस देह में आत्मविचार का आविर्भाव होना योग्य जानकर, जो आत्मविचार शब्द मार लिया है, ऐसे मनुष्य देह में आत्मविचार का आविर्भाव होने योग्य जान करके सर्व देहार्थ की कल्पना छोड़ करके, सर्व देहार्थ की कोई बात नहीं, देह के लिए कोई मुख्यता नहीं, कोई चीज की मुख्यता नहीं करनी है, अनकंडीशनल आत्म कल्याण ही करना है, नहीं शरीर के लिए नहीं करो। आत्मकल्याण के हेतु से एकांत हो तो थोड़ा करने की छूट है।
कैसे
हाँ उसमें कभी कभी छेतरपिंडी हो जाती है। तो उसमें क्या है कि रहा एडजस्टमेंट का विषय कि हमारे अभिप्राय में तो दो बात हो गई नहीं, हमारे अभिप्राय में तो दो बात हो गई नहीं, अभिप्राय में कोई एडजस्टमेंट नहीं, लेकिन बाह्याचरण में अभिप्राय विरुद्ध थोड़ा एडजस्टमेंट होता है कभी। वो इस कारण से होता है कि अपने परिणाम की शक्ति मुमुक्षु के नाप में आती है, तो वो हट करके परिणाम गिर जाए ऐसा भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हट नहीं करना है वो लेकिन अभिप्राय में अगर बात शिथिलता आ गई तो ये पूरी भूल हो जाएगी, ये भूल पूरी हो जाएगी। इसलिए आचरण में बाह्य कार्य में कभी एडजस्टमेंट होता है तो वो भी अभिप्राय विरुद्ध होता है, और उनको फील होता है कि इतनी भी मेरी शिथिलता या कमजोरी है तब तो मैं एडजस्टमेंट करता हूं ना, वरना मैं अपने स्वरूप को क्यों नहीं साध लूं, अभी अभी क्यों नहीं साधूं। तो अभिप्राय में दो बात नहीं हो सकती क्योंकि वो उल्टा अभिप्राय हो जाता है, लेकिन आचरण में एडजस्टमेंट होता है कभी कभी, तो खेद के साथ होता है, वो अभिप्राय विरुद्ध होने से खेद के साथ होता है, ये इसका लक्षण है कि अभिप्राय विरुद्ध है कि अभिप्राय सही, तो वो कैसे जाने कि अभिप्राय विरुद्ध जिसको करना पड़ता है उसको खेद आए बिना नहीं रहता। हाँ कंटिन्यू तो ठीक नहीं रहे, दूसरी बात है उस वक्त तो खेद आवे ही आवे, फिर तो परिणाम तो बदलते रहते हैं, एक से परिणाम तो किसी के रहेंगे नहीं ने हमेशा के लिए। जिसको आत्मकल्याण का निर्धार हो गया, फर्स्ट प्रायोरिटी आ गई, उनको ऐसा होता है। इसलिए सर्वदेहार्थ की कल्पना छोड़कर एक आत्मार्थ में ही उसका उपयोग करना देह का, ऐसा निश्चय मुमुक्षु जीव को अवश्य करना चाहिए। मुमुक्षु के लिए लिखा है, ऐसा निश्चय मुमुक्षु को अवश्य करना चाहिए। जैसे बीमार होते हैं दवाई लेने का होता है, लेने के नहीं लेने, ये सवाल आता है, तो अपने परिणाम को देख, परिणमन और अभिप्राय दोनों का एडजस्टमेंट होना चाहिए। अभिप्राय में तो वही बात है कि हमको एक ही काम करना है, दूसरा दो काम करना ही नहीं है, फिर करना पड़ता है वो बात अलग हो जाती है, वो अलग बात है, हम करें वो बात अलग है, हमको करना पड़े वो बात अलग है। करना पड़ता है वो हमारे पर जैसे कोई जबरदस्ती हो रही हो, कोई बलात्कार के हम वश हो रहे हो, ऐसी बात हो जाती है। जीव भावी नुकसान जो हो भी सकता है या नहीं भी होवे, उसके भय से वर्तमान को गंवा बैठता है, तो जब भविष्य वर्तमान बनकर सामने आएगा तो उस समय वह संभल पाएगा, इसकी क्या गारंटी है? संभल पाएगा ही नहीं, गारंटी का सवाल नहीं होता, संभल ही नहीं पाएगा। अभी जो घबराता है वो तो सामने आने से तो और घबरा जाएगा, एकदम एकदम परिणाम गिर जाएगा उस वक्त। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, उदय सामने आएगा तो एकदम डाउन हो जाएगा वो तो। इसलिए वर्तमान को सामने रखकर वर्तमान में आत्मकल्याण की भावना आविर्भूत हो उसी प्रकार से ही उद्यमवंत होना चाहिए। ठीक, प्रयत्न तो ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे ही डिसीजन देना है, किसी का नाम मुमुक्षुता है, वरना मुमुक्षुता भी नहीं है। कल चर्चा हुई थी कि वरना मुमुक्षुता, भविष्य का जो विचार करता है आत्मकल्याण के विषय में, वो वास्तव में आत्मकल्याण करना नहीं चाहता है, इसकी नियत अच्छी नहीं है। दिखाओ कितना भी अच्छा हो, गुजराती में एम कहवाय छे कि एनी दानत खोराक टोपरा जेवी छे। गुजराती में शू कहे, एनी दानत छे खोराक टोपरा जेवी। खोराक टोपरा समझते नहीं समझते हिंदी में, बिगड़ा हुआ कोपरा, कोपरा मैंने कोपरा तो नारियल, तो बिगड़ जाता है तो वास आती है ना, तो इसके अभिप्राय में से ये बू आती है कि गड़बड़ है उसमें। वर्तमान को जो संभालता नहीं है, भविष्य पर जाता है, उसकी नियत है वो बिगड़ी हुई है। उसका पहले तो उनको सत्संग जरूरी है, और सब प्रतिबंध को जो है उसको देख करके हटाना पड़ेगा। जो चीज प्रतिबंधक हो उसके सामने रख करके, मैंने इसकी प्रत्यक्षता देख लेना कि हम कैसे छोड़ते हैं उसको, हमारे परिणाम का लगाव कैसा हो रहा है और क्यों हो रहा है। ये कोई शरणभूत है हमारी आत्मा को, हमारी आत्मा चार गति में परिभ्रमण करने को बधी हुई है, चली जाएगी, इसके लिए कोई शरणभूत हो सकते हैं क्या? जिसका हमें प्रतिबंध है वो हमको शरणभूत हो सकेगा क्या? बस प्रैक्टिकल साइड से वास्तविकता में आ जाए तो मालूम पड़ जाएगा कि हम बहुत मूर्खता कर रहे हैं। मालूम पड़ जाएगा, सवाल ही नहीं है, अपना ड्यूटी मेंटेन करो, परिणाम ठिकाने रखो। भाव माता भी बाल बच्चे की परवरिश करते हैं तो ड्यूटी तो बराबर मेंटेन करती है, लेकिन उनको अपनत्व नहीं होता। ऐसे ड्यूटी मेंटेन करो, परिणाम को तो व्यवस्थित रखो, परिणाम को मत बिगाड़ो। हाँ, वो ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो उसमें तो परिणाम को ही समझना है कि क्या हम लगाव के साथ ड्यूटी कर रहे हैं या लगाव नहीं है और कर रहे हैं, क्योंकि हमें द्वेष तो नहीं करना है ना, इसलिए ड्यूटी कर रहे हैं। और हमारे हमारा भी कोई कार्य वहां से होता है। जैसे एक आदमी जो घर का मुख्य आदमी हो, पैसा कमा करके घर में देता है, अपनी कमाई ला करके घर में देता है, और उसे सब उनको अनुकूलताएं प्राप्त होती है। लेकिन ये अनुकूलता प्राप्त होने में दूसरी दूसरी जो तैयारी करनी पड़ती है, दूसरे लोग करते हैं परिवार के, तो उनकी सेवा लेते हैं कि नहीं? तो आप जिसकी सेवा लेते हो तो उसको सर्विस चार्ज दे दो। आप अन्याय मत करो, हमको सेवा आपकी लेनी है और आपको सेवा देनी नहीं है, वो तो अन्याय हो जाएगा। ऐसा नहीं, बस जो कमाई है वो दे दिया आपको, घर में कमाई ला करके दे दिया, लेकिन मेरे परिवार हैं, मेरे हैं, वो सब ठीक रहे, अच्छे रहे, खुश रहे, वो रहे, वो रहे, वो राजी तो हम राजी, वो गड़बड़ है। क्या लगेगा कि ये निर्दय पना है, लेकिन ऐसा निर्दय होना भी जरूरी होता है। द्वेष नहीं करना, इसका निषेध आना ही चाहिए। किसी के गलत अभिप्राय को हम अनुमोदन क्यों करें और किसी की गलती का पोषण क्यों करें हम? वो तो उनके लिए भी नुकसान का कारण है। किसी की गलती का अनुमोदन
शोषण करना ये सबसे इसका बड़ा दुश्मन है क्या ये सबसे बड़ा इसका दुश्मन है क्यों कि ऐसे करके उसको अधोगति में ले जाएगा ऐसी गलती के प्रति निर्दय होकर के ठीक करने का प्रयास करना यही सच्ची मित्रता है इसकी ये सच्चा हित छुपना है इसका उनको भले ही ऐसा लगे कि मेरे विरुद्ध करते हैं लेकिन वो ही सच्चा इसका हित करने वाला है डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो क्या दर्द नहीं होता है क्या लेकिन क्या है इनको ठीक करने के लिए ऑपरेशन करना पड़ता है कड़वी दवाई देना पड़ता है कुछ भी करना पड़ता है जो इनको नहीं सुहाता ऐसा सब कुछ करना पड़ता है तो क्या डॉक्टर दुश्मन थोड़ी हो जाता है ने अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु सिद्ध भगवान को भी बारात में ले जाना है उनको तो क्या वो सिद्धालय में विराजमान है हिलते नहीं है तो कह नहीं आप नीचे आओ हमारा दीक्षा का प्रसंग है आपको आना पड़ेगा आप तो भगवान है भक्त के वश होते हैं आपको आना पड़ेगा अरहंत आदि को स्मरण करके नमस्कार करते हैं ये ही प्रिय सगे हैं ये वाला सगा है બોલા નહી કુટુંબ પરિવાર વાલા સગા નથી આજ સાચા વાલા સગા છે જૈસે લગ્ન પ્રસંગ મેં વાલા સગા ને આમંત્રણ આપે છે એમ ધર્મમાં ઈષ્ટ એવા સિદ્ધો અરહંતો જીનબિંબો વગેરેને યાદ કરીને નમસ્કાર કરે છે કેમ એમના ઉપકારને ભૂલતા નથી આજે મને વિવેક પ્રગટ્યો છે તે તેમનો ઉપકાર છે એ બધા મારા ગુરુઓ અને પરમ ગુરુઓ છે આચાર્ય ઉપાધ્યાય સાધુ ગુરુ છે અને સર્વજ્ઞ અને જે સર્વજ્ઞ અરિયંતસિદ્ધ છે મારા પરમ ગુરુ છે એમના ઉપકારને ભૂલતા નથી પછી એને સાચા નિમિત્તનું બહુમાન આવતું નથી તેને આત્માનું મહાત્મ તો આવતો જ નથી એમ કરીને ત્યાં નિમિત્તનો વિવેક તે ખરેખર આત્માનો વિવેક છે એ વાત અહીંયા કરી છે રૂપે એમ સમજતા હતા કે કાંજી સ્વામી નિમિત્તને માનતા નથી પણ એમના શબ્દો છે કે નિમિત્તનો વિવેક તે ખરેખર આત્માનો વિવેક છે એ ગુરુ શાસ્ત્રનો વિવેક તે આત્માનો વિવેક છે સ્વરૂપ દ્રષ્ટિ જેને થઈ છે એવા જ્ઞાની પુરુષને અને સ્વરૂપ દ્રષ્ટિ થવા લાયક છે એવા જે મુમુક્ષુ પુરુષને એ નિમિત્તનો વિવેક આવ્યા વિના રહેતો નથી આવે આવે ને આવે જ વિનય પરમ વિનય આવે ખૂબ વાત ધ્યાન ભક્તિ વાળા આર્ટિકલ ને તો કાપી આવ્યા છે આત્મકલ્યાણ કી સચ્ચી ભાવના યથાર્થ ભાવના ઉપર બહારનો સત્સંગ છે સરળતા છે વૈરાગ્ય છે ઓર ભક્તિ છે બહુમાન છે બસ ફિર કોઈ ભી પ્રકાર કા પ્રતિબંધ ઉસકે સામને આયેગા તો વો ઉસકો હટાને મેં કોઈ જ્યાદા પરિશ્રમ નહીં કરના પડેગા વરના પસીના ઉતર જાયગા અગર યે બાત રહી તો સહજ માત્ર મેં પ્રતિબંધ કો હટા સકતે હૈ મિટા સકતે હૈ વરના પ્રતિબંધ હટના તો આસાન બાત નહીં દુબારા વો કામ નહીં કરના પડે એક દફે હિંમત સે તાકત સે સાથ લેના હૈ ઓર સમજદારી સે લેના હૈ ઉસમે હમારી સમજ હૈ કે હમારા જો ગોલ હૈ હમ જિસ આદર્શ કે પ્રતિ જા રહે હૈ યે જગત કા સર્વોત્કૃષ્ટ કાર્ય હૈ તીન લોક કા નાથ બનને કી બાત હૈ યે મામૂલી પદ નહીં હૈ જિસકો હમ લેને કો જા રહે હૈ વો કોઈ મામૂલી કામ નહીં હૈ તીન લોક કા નાથ तो जगत में इससे बढ़िया कीमत वाला कौन काम हो सकता है कौन सा काम हो सकता है एक भी नहीं है तो इसकी प्रायोरिटी मूल्यांकन के हिसाब से आनी चाहिए सहज आ जाती है तो उसको कोई प्रतिबंध नहीं आएगा कोई बिगाड़ नहीं सकेगा तो सीधा हिसाब लगाएगा कि मेरा सिद्ध पद से ये ज्यादा कीमत वाला है या सिद्ध पद से ज्यादा कीमत वाला है क्या कौन ज्यादा कीमत वाला है कोई नहीं जगत बस बात क्यों इसका नंबर छिल्ला है आखिर का छिल्ला मैंने आखिर का आज मेहमान आ गए सब्जी तरकारी लाने का था क्योंकि दो तीन सब्जी और तो बनानी पड़े तो फिर सत्संग का टाइम कहाँ से बचेगा या एक टेलीफोन आ गया क्या करें टेलीफोन आता है तो बात तो करनी पड़े किसी का टेलीफोन आया लेकिन हमारे सगे संबंधी मित्र सबको जान पहचान वाले को बता देते इतने से इतने टाइम पर हम अवेलेबल नहीं है आपको टेलीफोन करना हो तो आगे पीछे कर लीजिए वरना मत करिए हम नहीं मिलेंगे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रहना है अंधश्रद्धा वाले भी उतना तो करते हैं जो लोग अंधश्रद्धा से पूजा भक्ति करते हैं तो बोल देते हैं पूजा में बैठने का किसी से बात नहीं करते हमको बैठना पड़ेगा तो जो दृढ़ता से काम करता है तो उसमें कोई तकलीफ नहीं लेकिन खुद की दृढ़ता नहीं है कमजोरी खुद की है तो सब माथे पे चढ़ जाएंगे सत्संग की भावना तो निरंतर की चाहिए क्या जो जो सत्संग से लाभ होता है उसकी भावना तो निरंतर की रहती है तो वो भावना नहीं भूली जाती भावना हो तो साथ साथ सच्ची भावना के साथ साथ प्रयास रहता ही वरना भावना नहीं है एक ऊपर छल्ला विकल्प है ऊपर ऊपर का या ऐसा करना चाहिए कि हम सत्संग हमारे समय पर अवश्य करते रहेंगे नियमित रूप से रोजाना करेंगे बाकी के जो टाइम बचेगा उसमें हम संसार के कार्य जितना होगा उतना करेंगे नहीं होगा उतना नहीं करेंगे लेकिन इसको छोड़ करके हमें कुछ तो सत्संग से भला होने वाला नहीं है से तो सत्संग से लाभ भी होने वाला नहीं, क्योंकि सत्संग का मूल्य तो आया नहीं, तो सत्संग से क्या लाभ होगा? कुछ लाभ होने वाला नहीं। पहले ये तो हम करेंगे, बाद में जो होगा सो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, नहीं ये तो करना ही है, ये जरूरी है हमारे लिए, ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसे प्रायोरिटी आए बिना सत्संग का लाभ भी नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है वो भी निकम्मा जाता है, व्यर्थ हो जाता है। ऐसे सत्संग से लाभ नहीं होगा, कभी भी लाभ नहीं होगा। उसमें तो क्या है, वास्तव में क्या परिस्थिति है कि हम फंसे हैं और जगह, और वहां फंसे हुए रहते हैं, और जहां फंसे हुए रहते हैं वहां से हमें निकलना भी नहीं, प्रयास कहां से होंगे, क्या क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। जैसे एक आदमी का माथा तो कुएं के पानी के अंदर तलवा में पत्थर के नीचे फंस गया है, डाई मारता है ना ऐसा जाता है तो फंस जाता है माथा, फिर हाथ पैर कितना हलावे, माथा ही फंस गया है, निकलेगा कहां से, बचेगा कहां से। ऐसे हमारा पूरा माथा तो फंसा हुआ है, हाथ पर ऐसे ऐसे करते हैं, फालतू के फंसने वाले नहीं है। सत्संग तो एक सिद्ध पद पाने का रसायन है, उसकी कीमत बहुत है, थोड़ी नहीं है, इसकी कीमत बहुत है। वो लड़का मिला था देवलाली में, तो पिताजी को क्या बोला, वो पर्सनल मीटिंग में बैठे थे, तो उसके पिताजी ने बोला हम कभी कभी भावनगर आया करेंगे, हम कभी कभी आपको पत्र से भी प्रश्न पूछाएंगे तो आप उत्तर देंगे ना। तो लड़का क्या बोलता है कि प्रश्न आप चिट्ठी में लिखेंगे, ऐसा क्यों, प्रश्न पूछना हो तो चले जाओ वहाँ, चिट्ठी क्यों लिखोगे। और भावनगर और बम्बई का प्लेन में तो आधा घंटा का पौने घंटे का रास्ता है, एक प्रश्न के लिए जाके चले आना, क्या एक प्रश्न उठे तो आप प्लेन से चले जाना, तो कल वापस आ जाना अगर आपको जरूरी काम हो तो, लेकिन चिट्ठी मिट्टी मत लो, ऐसा काम कभी मत करो। इसका कहने का क्या है, बिल्कुल नया लड़का था, तो अपना स्वाध्याय वहाँ चलता था, उसमें कुछ नहीं समझता था, बोले कि मैं तो बिल्कुल नया हूँ, आपका एक शब्द हमको समझ में नहीं आता, ये परिभाषा ही अलग है, ग्रीक लैटिन लगता है आप बोलते हैं तो, आप जो भी बात बोलते हैं हमको तो ग्रीक लैटिन जैसी लगती है, हमको एक शब्द समझ में नहीं आता है। लेकिन इनकी योग्यता बहुत अच्छी थी, कोई कहाँ से बोलता था, क्योंकि पिताजी को उसने ठपकारा सबके बीच में, एक प्रश्न के लिए आपको वहां जाना चाहिए, प्लेन से जाना चाहिए, ट्रेन में भी नहीं जाना चाहिए, 15 घंटा का रास्ता क्यों लेट क्यों करे, ट्रेन में तो 15 घंटा लगता है, ट्रेन से चले जाना चाहिए। कुछ नहीं समझता था, क्यों बोलता था ऐसे, इसका मतलब आपको इतनी वैल्यू होनी चाहिए सत्संग की, सत्संग के लिए हम कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार, तभी उसका फायदा होता है। पहले से ही सत्संग की कीमत आई नहीं और हम सत्संग करते रहे हैं, तो सत्संग से कुछ होने वाला है, और सत्संग हुआ ही नहीं होना तो होता ही नहीं। तो कभी कभी बहुत सी बातें अच्छी बोलता है, बिल्कुल 24-25 साल की उम्र थी, कितना भी पैसा कमाने में हमको कभी આસક્તિ નહીં હોતી, 50 લાખ મિલ જાય તો હમકો યે નહીં લગતા કે ચલો રસ નહીં આતા હૈ, કોઈ કોઈ સ્વાધ્યાય નહીં, કોઈ સત્સંગ નહીં, કુછ નહીં, બિલકુલ પહેલા પહેલા આયા થા યોગ્યતા બહુ અચ્છી, લોક ફસતે હૈ ઇસમે. ફસને કે કોઈ જગ્યા આપકો નહીં દેખતી, લેકિન ક્યાં કરે, હમ જાનતે નહીં, કુછ સમજતે નહીં, કોઈ વાત નહીં, સત્સંગ કરો ફિર સમજ જાઓગે, તો સમજના કોઈ કઠિન વાત નહીં, બહુ આસાન, પ્રયોજન કે પકડ વાળા. હા તો ઘબરાહટ હો જાય, નહીં બસ બોલો તો એસા બોલા થા, 50 લાખ આ ગયા તો હમકો તો ઘબરાહટ હોતી હૈ, રસ નહીં આતા એક ઘબરાહટ હોતી. 254 માં એક કૃપાવતી બોલ્યું છે કે મોહાશક્તિથી મૂંઝાઈને જે મોક્ષને માટે પ્રયત્ન કરે છે તેને મુમુક્ષુતા છે. મુમુક્ષુતાનું લક્ષણ હતું એનામાં, કાંઈ વાંચ્યું નથી, સાંભળ્યું નથી, સમજતો નથી, પણ મુમુક્ષુતાનું લક્ષણ બહુ સારું હતું, બહુ સારું લક્ષણ. પાત્રતા હોય તો કઈ છુપી રહેતી નથી, વિકલ્પ આ જાય, બહુ અચ્છા.